शांति। तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति मीठे बच्चे। इन दो लाइनों का अर्थ जिन बच्चों ने समझा वो हाथ खड़ा करो। सुबह की साकार मुरली। तकदीर जगा कर आई हूं, कौन कहता है? आत्मा। तो जिन्होंने इन दो लाइनों का अर्थ समझा वो क्या करो? हाथ उठाओ। पर प्रश्न है, समझा क्या? जागना। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, जाग 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 रे मातृभू पुकारती। शत्रु अपने शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता। पार्थ की समाधि को, शंभु के निवास को, देख आंख खोल तू, अर्गला टटोलता। अस्थि दे की रक्त तू, वज्र दे की शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती। मातृभू पुकारती आज नेत्र तीसरा, रुद्र देव का खुले, तांडव के तान पर काप व्योम यू बोदुले। मान सर पे जो उठी बाहु शीघ्र ध्वस्त हो, बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले। जाग शंख फूक रे शूर यू न चूक रे, मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती। आज हाथ रिक्त क्यों, जन जन विक्षिप्त क्यों, शस्त्र हाथ में लिए करके तिरछी आज भो। देश लाज के लिए, रन के साज के लिए, समय आज आ गया, तू खड़ा है मौन क्यों? करो सिंह गर्जना, शत्रु से है निपटना, जय निदाद बोल रे हे अजय भारती। मातृभू पुकारती, क्या पुकारती है? जाग 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 रे जाग। अध्यात्म अर्थात एक ही शब्द है, क्या? जागरण। इस एक शब्द में संपूर्ण धर्म समाया हुआ है, संपूर्ण जागरण अर्थात संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जागरण अर्थात संपूर्ण योग, संपूर्ण जागरण अर्थात संपूर्ण धारणा, संपूर्ण जागरण अर्थात संपूर्ण सेवा। एक ही शब्द है जागरण, जाग 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 रे। तो आज हम चर्चा करेंगे जागरण के सूत्रों पर। जागरण के कौन से सूत्र है, पर जागना किससे है, जगाया किसे जाता है? जो सोया है, जो नींद में है। जगाया किसे जाता है? जो बेहोश है। जगाया किसे जाता है? जो विस्मृति में है। यह सारा खेल इन चार बातों में है, नींद, जागरण, होश, बेहोश, होश, विस्मृति, स्मृति, मर्ज, इमर्ज। चार ही है, इसमें सारा खेल है। जब जब ज्ञान मर्ज हो जाता है, क्या होता है? भूले होती है। जब जब विस्मृति होती है, भूले होती है। जब जब बेहोशी आती है, भूले होती है। जब जब हम नींद में खो जाते हैं, तब भूले होती है। जब जाग जाते तो संपूर्ण ज्ञान है, और फिर हम संकल्प करते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पर जब वो नहीं कर रहे, जब वो कर रहे, उस समय तो सोए हुए हैं, इसलिए कोई भी संकल्प वहां काम नहीं करता। इसलिए काम जागरण पर करना है। काम किस पे हो? जागरण पर। तो जागना है किससे? नींद से। जागना है किससे? बेहोशी से। जागना है किससे? विस्मृति से। जागना है किससे? अज्ञान से। तीन प्रकार की नींद है। एक नींद स्थूल, दूसरी नींद अज्ञान की नींद जिसमें संसार सोया हुआ है, तीसरी नींद जिसमें ब्राह्मण सोए हुए हैं, विस्मृति की निद्रा। ऐसा नहीं कि ज्ञान है नहीं, ज्ञान है, परंतु जिस समय ज्ञान भूल जाता है, उस समय गलती होती है, उस समय भूले होती है, उस विस्मृति की अवस्था में, उस बेहोशी की अवस्था में, उस नींद की अवस्था में, उस मर्ज जिंग की अवस्था में जो कुछ होता है, सब कुछ पाप है। पाप और पुण्य की सबसे सरल परिभाषा यही है, जो कुछ बेहोशी में किया जाएगा वो पाप, जो कुछ विस्मृति में किया जाएगा वो पाप, जो कुछ नींद में किया जाएगा पाप, जो कुछ जब ज्ञान मर्ज हो गया है थोड़े समय के लिए, उस अवस्था में जो कुछ किया जाएगा वो पाप, जो कुछ जागरण में किया जाएगा, होश में किया जाएगा, वो सब क्या है? फिर वो पुण्य है। सबसे बड़ा जागरण है भ्रम से जागरण। भ्रम अर्थात अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है इल्यूजन, एक है डिल्यूजन। इन दोनों में क्या अंतर है? जिन्होंने सुने हैं ये शब्द वो बता सकते हैं। एक है इल्यूजन, एक है डिल्यूजन, दोनों में क्या अंतर है? इल्यूजन अर्थात भ्रम। हम दूर से देख रहे हैं, सांप दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, वहां सांप है नहीं, रज्जू है। वो क्या है? वो एक रस्सी है, पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सांप। पर हम लाइट जब ऑन कर देते तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, हमें खुद ही समझ जाता है कि ये सांप नहीं है। उसी तरह ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑडिटरी इल्यूजन्स होते हैं, अलग अलग इल्यूजन्स होते हैं, मान्यताएं भी आ जाएगा इसमें। पर जब कोई समझा दे, कोई सिखा दे, तो हम इस इल्यूजन से मुक्त हो जाते हैं। यह है इल्यूजन, भ्रम, यह हमारा भ्रम है। हमें कोई सिखा दे, समझा दे कि यह तुम्हारा अंधविश्वास है जो तुम्हें पालते आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो हमको सिद्ध कर दे, तो हम उस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। इससे मुक्त हुआ जा सकता। डिल्यूजन क्या है? यह मेडिकल टर्म है। इसमें व्यक्ति की इतनी गहरी और इतनी पक्की मान्यता हो जाती है कि कुछ भी कर दो वो मानता ही नहीं है, वो उसकी फिक्स धारणा हो गई है। और ये अलग अलग प्रकार के, इसके लिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, वो सोचता है मैं प्रेसिडेंट हूं। अब उसको समझाओ, हर तरीके से समझाओ, वो आप उसको समझा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, उसने ये मान लिया है और वो लॉजिकल नहीं है, कोई भी लॉजिक वो स्वीकार ही नहीं करता है। उसको इतना गहरा अंदर चला गया है, इतना गहरा चला गया है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ पावर्टी, सब कुछ है पर वो सोचता है मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास ये बंगला है, ये सब कुछ है, पर वो मान्यता इतनी गहरी चली गई है, इतनी गहरी कि इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इनको एडमिट करना पड़ता है ये पेशेंट्स को। डिल्यूजन ऑफ पावर्टी, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, मेरे से पाप हुआ है। उसको समझाओ, अरे भाई तुमसे बड़े बड़े पापी ये सब बैठे हैं यहाँ। वो कहता है नहीं, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है, मैंने बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया है, मैं ही पापी हूँ। और वो इतना गहरा है, उसको कितना भी समझाओ वो अपने ग्रैंड, इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, उस गिल्ट से वो मुक्ति नहीं हो पाता है। माना उसकी गलती है पर बहुत ज्यादा, मैं अपवित्र हूं, मेरे से अपवित्रता का कार्य हुआ है। अब कितना भी समझा, अभी भूल जाओ, बाबा के सारे महावाक्य बताओ, आगे का जीवन चालू करो, नहीं, पकड़ के रखा है। ये डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ डाउट। ये दो लोग जो बात कर रहे हैं ना, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, सब पर डाउट करते, सभी पर डाउट, डिल्यूजन ऑफ डाउट। और उसको कितना भी समझाओ, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है ना, इतना गहरा चला गया है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, मैं बहुत महान हूं, ये सब मूर्ख है, मैं सबसे होशियार हूं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, ये जो डिल्यूजन से, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, ये मानते नहीं है वैसे। ये डिप्रेशन तो बहुत छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ा है, ये साइकोसिस में आता है। साइकेट्री में दो प्रकार की बीमारी है, एक है न्यूरोसिस, एक है साइकोसिस। न्यूरोसिस अर्थात चलो जॉब में रिजेक्ट कर दिया, इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया, उदास लगा, ये छोटा मोटा, वो न्यूरोसिस है, वो काउंसिलिंग से, ये सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। दूसरा है साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, पागलपन, जिसको कहते हैं वापस प्रॉपर, जो पागल जिसको कहा जाते हैं वो साइकोसिस, उसके लिए बिना ट्रीटमेंट के वो ठीक नहीं होते, उनको ट्रीटमेंट लगती है। तो ये जो है, ये इसमें आता है, मेजर में आता है। हम चर्चा डिल्यूजन की नहीं करेंगे, इल्यूजन की करेंगे, क्योंकि डिल्यूजन ये मेडिकल चर्चा है। ये जो इल्यूजन है, इसे ये क्या है? भ्रम। जैसे एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल की हो गई है, सारे गांव वाले कहते हैं आपका हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, छोटा गांव है तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उस गांव में अभी पहली बार रेल चालू हुई है, आज तक कभी रेल थी नहीं, और कोई भी आज तक पूरे गांव से रेल गाड़ी में बैठा नहीं है। तो वो कहते हैं क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग है, बड़े हैं, और आपको बर्थडे गिफ्ट के रूप में आपके लिए ट्रेन सफर हम सब गांव वालों की तरफ से, ऐसा पंचायत निर्णय लेती है। तो वो व्यक्ति उस ट्रेन में बैठता है, पर साथ में एक दूसरा साथी भी बैठता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए। तो दोनों ट्रेन में बैठते हैं और जाना चालू करते हैं। ट्रेन चालू हो जाती है, उनको बहुत खुशी होती है, नया नया फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रेन का। जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे, वो पानी की बोतल वाले, पेप्सी, लिमका, कोल्ड ड्रिंक वाले आ रहे हैं। तो उनमें से एक, वो जो बूढ़ा व्यक्ति वो जो है, वो दूसरा वो लेता है, एक जन लेता है। वो कहता है आधा आधा पियेंगे। तो वो पीने लगता है, आधा भी पूरा हो जाता है, दूसरे को लगता है मेरा क्या, वो छीनता है मुझे दो। और जिस समय छीनता है उस समय गाड़ी टनल से गुजरती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुरंग, एक काली अंधियारी घटाटोप अंधकार जिसमें कुछ भी नहीं दिखता, वहां से ट्रेन उसी समय गुजरती है। जिसने वो पिया था वो ड्रिंक, वो कहता है रुको, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये पीना मत, इस पीने की वजह से आई हैव स्ट्रक ब्लाइंड। क्या किया उसने, ये एक कोइंसिडेंस हो गया है कि उसने वो पिया और वो टनल से, उस सुरंग से ट्रेन गुजरी, उसने दो चीजों को जोड़ दिया, पीना और न दिखना। इसे कहते हैं इल्यूजन। हम भी दिन भर यही काम करते हैं, एक चीज को दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे जोड़ा उसका उससे कोई संबंध नहीं है, पर वो जोड़ इतना गहरा है कि वो भ्रम हमें सत्य भासता है। कोई व्यक्ति है, वो मेरा मित्र है, सबसे अच्छा मित्र है, परंतु वो षड्यंत्र कर रहा है हमारे खिलाफ मन ही मन, कैसे इसको फंसाऊं। परंतु हमें जो प्रेम की खोज थी वो प्रेम उससे मिला, वो प्रेम और वो दोस्ती हमने जोड़ी है, एक इल्यूजन क्रिएट किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आज दिन भर खुद ही देखना आप मन किस किस प्रकार के इल्यूजन्स क्रिएट करता है। ये सब खेल इधर हो रहा है, जागरण अर्थात इन्हीं इल्यूजन से मुक्त होना, इन्हीं भ्रम से मुक्त होना, जागरण अर्थात डिसइल्यूजनमेंट। ये जो भट्टी है ना, ये डिसइल्यूजनमेंट की भट्टी है। एक तो डिटॉक्स भट्टी, एक डी एडिक्शन भट्टी, और आज बता रहे हैं डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट अर्थात भ्रम से मुक्ति। भ्रम को भ्रमित कर देना। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो लोग कहने लगे, अच्छा तो तुम हमको हिप्नोटाइज करने आए हो, या हमको हिप्नोटाइज करने आए हो, हम हिप्नोटाइज होने वाले नहीं, वी आर साइंटिफिक पीपल। वो कहते हैं यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू। तुम पहले ही हिप्नोटाइज हो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। मैं तुम लोगों को डी हिप्नोटाइज करने आया हूं। नचवाति भूत संगम, ये शरीर तुम नहीं हो, तद ब्रह्म निष्कलमहम, वो जो आत्मा है वो चेतन तुम हो। तो ये डी हिप्नोसिस की भट्टी है, डी मिस्टिफिकेशन की भट्टी है। वो सारी मान्यता है, वो सारे भ्रम जो हमने अपने अंदर पाल रखे हैं और जिसके साथ हम जीते हैं, जिसके सहारे जीते, जिसमें जीते। तो अध्यात्म अर्थात जागरण, अध्यात्म अर्थात डिसइल्यूजनमेंट, अध्यात्म अर्थात सभी भ्रमों से मुक्ति। तो सबसे पहले तो ये पता चाहिए। और भ्रम से मुक्त कैसे हो? नहीं, भ्रम, ये भ्रम हो गया है, वो रस्सी सांप है वो। और सांप देखने के बाद हम दो चीजें करते हैं, या तो जो बहादुर होगा या पकड़ने वाला होगा, सुशील भाई होंगे तो जाकर उसको पकड़ लेंगे हाथ से यू। दूसरा कोई हो गया तो सांप 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 और भाग जाएगा। तो दो प्रकार के रिस्पॉन्स है, फाइट और फ्लाइट। एक तो फाइट करेगा या तो फ्लाइट, भाग जाएगा। सत्य कौन सा है? पर है वो सांप तो है ही नहीं, रस्सी है, दोनों ही गलत है। करना क्या है? प्रकाश को लाना है, लाइट को लाना है, क्योंकि ये हो किस लिए रहा है? ये भ्रम उत्पन्न हुआ है, अंधेरा है इसलिए उत्पन्न हो रहा है। इसलिए प्रकाश को यहां लाना है, प्रकाश आते ही वो फिर है ही नहीं। या तो प्रकाश है, और प्रकाश अगर नहीं है तो सांप है। प्रकाश अगर ला लिया तो फिर यहां कुछ भी नहीं है, फिर ये लड़ाई व्यर्थ हो गई। अब किससे लड़ रहे? ये विकार भी क्या है? रस्सी है। जब हम विस्मृति की अवस्था में, तब हमें वो सांप दिखाई देते हैं, खतरनाक दिखाई देते हैं, उससे हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सारा जीवन काम विकार से लड़ते लड़ते गुजर जाता है, सुनते हुए काम महाशत्रु काम महाशत्रु, लड़ाई में ही चला जाता है। प्रकाश को लाओ, प्रकाश अर्थात संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण समझ। समझ आते ही दिखाई देने लगता है ये और ये क्या है, और हम मुक्त होते हैं। तो जागरण के 8 सूत्र है। कोई व्यक्ति सोया है, वही सारे सूत्र यहां भी अप्लाई करेंगे। जो उसको उठाने के लिए चीजें लगती है, वो हमें भी अपने आप को उठाना है। यह प्रक्रिया है कि सोए भी हम हैं और उठाने वाले भी हम ही हैं। स्वप्न भी हम ही देख रहे हैं, और स्वप्न बड़ा मीठा है। स्वप्न में सब कुछ अपना अपना लग रहा है, अच्छे अच्छे लोग हैं, मिल रहे हैं, स्तुति हो रही है, लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी महानता की गायन कर रहे हैं, कीर्ति हो रही है, नाम हो रहा है। स्वप्न इतना सुंदर है। सबसे पहला तो जो सोया हुआ व्यक्ति है, उसको अगर कोई जगाए तो उससे प्यार करता है क्या? सुबह 2 बजे उठ के कोई कहे कि उठो अमृत वेला, उसमें तो बहुत इतना खलल पैदा किया हमारे स्वप्न में। जो जगाने वाले होते हैं उनको पसंद नहीं करते लोग। इसके लिए जीजस को सूली पर चढ़ा दिया, जगाने आया था। बुद्ध को पत्थरों से मारा, महावीर के कानों में कील ठोक दी, मंसूर को मार दिया, एक एक अंग काटा उसका, सुकरात को जहर पिला दिया। जो जगाने आएगा उसको कभी प्यार नहीं किया जाता है, उसे दुश्मन की नज़र से देखते हैं। क्योंकि हमारा जो सुखदायी जीवन है, आनंदमयी जीवन है, हमारा जो कंफर्ट जोन है, उसमें से कोई खींच के बाहर निकाले, आराम से सब कुछ चालू था, जगाना हमें अपने आप को है। तो सबसे पहली विधि, कोई व्यक्ति सोया है, खिड़कियां खोल दो, लाइट्स ऑन कर दो, आंख खुलती है उसकी, प्रकाश लाइट। इतना लाइट लाओ, इतना लाइट ला लो कि सोना ही मुश्किल हो जाए। उसको खटिया उठा के धूप में रख दो, अच्छे से सो रहा तो उठ जाएगा वो। जब प्रकाश एक विधि है जगाने की, वहां पर स्थूल प्रकाश, यहां पर हमारी विस्मृति की निद्रा है, अज्ञान की निद्रा है। यहां पर प्रकाश को लाओ, और प्रकाश को लाना अर्थात ज्ञान को लाना, ज्ञान के प्रकाश। इसलिए ये निरंतर हमारे मन में रहे कि हमने कुछ भी नहीं जाना है, जानना अभी बाकी है। जिसको ये गर्व हो जाता है मैंने सब जान लिया, उसका जीवन वहीं स्थिर हो जाता है, क्योंकि जानना अभी बहुत बाकी है। क्या हमने जाना आज की मुरली? मीठे बच्चे, जिन बच्चों ने इन 2 लाइनों का अर्थ समझा वो हाथ खड़ा करो। ऐसा उसको बोलना पड़ता है, अर्थात उसे अंदर कुछ पता है कि किसी ने कुछ भी समझा नहीं है। मुरली में 2 जगह पर है आज, अगर कुछ तकलीफ है तो बाप से पूछो, कोई भी बात है तो बाप से पूछो। अर्थात वो जब खुद ऑफर कर रहा है मुझसे पूछो, अर्थात वो ये जानता है कि तुमने समझा नहीं है, और तुम जो नहीं पूछ रहे हो वो तुम्हारा ही अपना अहंकार है, जिसकी वजह से हम नहीं पूछते। हम क्यों पूछें? ये जो नए लोग आएंगे ना वो पूछेंगे, ये हमारा काम नहीं। हमने सब जान लिया है, आदि मध्य अंत। फर्स्ट इस रियलाइजेशन पर आना कि हमने कुछ भी नहीं जाना है। क्या जाना? जो जाना वो केवल सूचनाएं हैं, आत्मा यहां, परमात्मा वहां, ये संगम युग, नाम को जाना है, नेमिंग किया है, बस लेबल रखे, ये सूक्ष्म वतन, वो परम धाम। जाना क्या है? जाना कुछ भी नहीं है। जैसे कोई कहे हमने शरीर को जान लिया, क्या जाना तुमने शरीर के बारे में? एनाटॉमी जान ली बस, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये लंग्स है, ये हार्ट है। तुमने क्या जाना है शरीर के बारे में? कुछ भी नहीं जाना है। शरीर जो स्थूल है, जो इतना दिखता है, उसको ही जान नहीं पाए। घाव होता है, कोई इतना पट्टी उट्टी करता है, सब कुछ करता है, इतना ध्यान रखता है, फिर भी घाव बड़ा हो जाए। कोई कुछ भी नहीं करता, उसका हील होता है। कितना मिराकुलस है ये शरीर, अजीब है, अद्भुत है। शरीर चौंका देने वाला है। शरीर में पता नहीं क्या क्या होते रहता है, कुछ कुछ होते ही रहते हैं। अजीब व गरीब है ये शरीर। तो शरीर जो इतना दिखता है वही हमने नहीं जाना, तो आत्मा तो दिखती नहीं, उसको हम किस, कैसा क्लेम है हमारा कि हमने आत्मा को जान लिया और परमात्मा को जान लिया? ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी एक भ्रम ही है कि हमने जाना है। सबसे पहले तो अपने इसी भ्रम को तोड़ देना है। हमने कोर्स कराए हैं, हमने ये कराया है, वो सब क्या किया हमने? जो हमको सिखाया सिखाया है, सिखा सिखाया ज्ञान जो है हमने, बस वो दूसरों को सिखा दिया। हमने रटा, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे ये है। वो जो छोटे बच्चों को कहो ना, 15 अगस्त पर भाषण रेडी रहता है उनका, इतना बोल के मैं अपना भाषण पूरा करती हूँ, जय हिंद जय भारत, हर 15 अगस्त में सेम भाषण, उसमें कोई चेंज नहीं है, किसी भी स्टेज पर खड़ा कर दो। ज्ञान अर्थात निरंतर पिपासा, अभिप्सा, जानने की उत्कंठा, क्या है क्या है, नए नए आयामों को समझना है। एक ही मुरली अलग 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 रीति से उसको समझना है। एक ही ज्ञान का पॉइंट अलग 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 रीति से उसको समझना है। एक व्यक्ति को कोई देखता है तो कितने अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। एक डॉक्टर देखता है तो सोचता है इसका ये कंधा थोड़ा नीचे है, वो ऊपर है, यहाँ पे इसको वो प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी बुद्धि यहाँ चालू हो जाती। इंजीनियर सोचता है तो कुछ और सोचता है। कोई बॉडी बिल्डर सोचता है तो कहता है ये एक्सरसाइज नहीं करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है तो चेहरे पर तेज है कि नहीं वो देखता है। कोई ब्यूटी पार्लर वाला, कोई उधर वाला होगा तो देखेंगे ये ब्यूटीफुल कितना है। एक ही व्यक्ति को कितने अलग अलग लोग देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति, छोटा बच्चा सोचता है उसे माँ दिखाई देती है, एक विकारी पुरुष देखता है तो उसे कामुक वस्तु दिखाई देती है, एक पिता देखता है उसे बेटी नजर आती है उसी में, एक ही व्यक्ति में, एक कुत्ता देखता है उसे अपना मालिक नजर आता है। तो उसी तरह ज्ञान की भी पॉइंट्स को अलग 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 रीति से देखना है कि इसको अगर वो उस नजर से देखो तो ये क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले क्या है? लाइट। लाइट जब आएगा ना तब जागेंगे। तो लाइट को लाना है, और लाइट के को लाने के लिए क्या चाहिए? ये भाव स्वीकार करो कि हमने नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, सितारों से आगे जहां और भी है, बहुत कुछ है अभी। शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें एक पात्र अपने साथी से कहता है, देर आर मेनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। अभी बहुत सी चीजें बाकी है जो तुम्हें पता नहीं है। इन हेवन एंड हेल अभी बहुत सारी चीज है। मैकबेथ कहता है अपने साथी से कि अभी बहुत कुछ बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो हमने जानी ही नहीं है। जो कुछ हमने जाना है वो कितना जाना है, कितना जाना है? वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस। खाली एक ऐसे खरोज की है बस सर्फेस, इतना ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। तो जागरण के लिए सबसे पहले चाहिए लाइट। दूसरा, लाइट खिड़कियाँ खोल दी फिर भी नहीं जागता तो क्या करते हैं लोग? बकेट से पानी डालते हैं उसके ऊपर। पानी चाहिए जागरण के लिए। वाटर। कौन सा पानी? प्रभु प्रेम का जल। प्रभु प्रेम का जल डाल दो, अपने आप जागरण हो जाएगा। किसके अंदर ऐसा प्रभु प्रेम, ऐसा परमात्मा प्रेम भर दो कि वो संसार की वासना है, वो जो लड़ रहा है विकारों से, एडिक्शन से, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यही तो था जिसके वजह से लोग ज्ञान में आए। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो हम कभी पूछते हैं, एक्सरे देखते हैं, अरे ये तो सीओपीडी। कभी सिगरेट पीते थे क्या? हाँ पीते थे पहले, ज्ञान में आने से पहले। कितने साल पिया? 40 साल। जैसे ज्ञान में आए बस छोड़ दिया, फिर बाद में इच्छा नहीं हुई कभी पीने की, कभी पिया ही नहीं उसके बाद। ये इतना पावरफुल। बाकी लोग छोड़ते हैं फिर गिरते, फिर छोड़ते फिर गिरते, फिर छोड़ते फिर गिरते, पकड़ते छोड़ते, उसके बाद कभी पिया, कभी हाथ भी नहीं लगाया। हाँ ये कैसे हो गया? ये प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम में वो पावर है, वो ताकत है कि आत्मा ऐसी जाग गई, ऐसी जाग गई, इटर्नल अवेकनिंग हो गया। फिर इसमें से अभी कभी वो बाकी चीजें चलो नहीं, पर इसमें कभी वापस नहीं गए। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया हमेशा के लिए। तो प्रभु प्रेम में वो ताकत है कि हमारे जितने एडिक्शंस है, जितने, केवल वो बीड़ी तंबाकू सिगरेट और वो नहीं, बाकी भी थोड़े मन में एडिक्शंस हमने निर्माण किए, रोने का एडिक्शन, दुखी होने का एडिक्शन, सेंसिटिव नेचर का एडिक्शन, किसी ने कुछ कह दिया तो 3 दिन तक मुंह लटका के उससे बात ही नहीं करना है, वो इधर से हम इधर से कट्टी। परमात्मा प्रेम को भरने की विधि है अमृत वेला। प्रभु प्रेम से स्वयं को इतना भर दो, इतना भर दो, और वो काम केवल अमृत वेला होता है। इतनी प्रभु प्रेम की किरणें स्वयं में आने दो कि फिर किसी देहधारी का, आज का वरदान है मुरली का, एक बाप का कर्तव्य, एक बाप की महिमा, एक बाप, दूसरा ना कोई, बस यही बुद्धि में रहे और कुछ नहीं। ये है सच्चे वफादार। कौन सा जल? प्रभु प्रेम का जल। जहां आ जाएगा वहां पर सोना मुश्किल है, फिर वहां बेहोशी मुश्किल है, वहां मर्ज हो जाना मुश्किल है, वहां विस्मृति मुश्किल है। निरंतर वो प्रेम खींचता रहे, ये दूसरा। तीसरा, पानी डाल दिया फिर भी नहीं उठ रहा है, आवाज करो उसके, कुंभकर्ण सोया हुआ है। क्या किया फिर रावण ने? ढोल बजाए उसके कान में, आवाज, साउंड। ये विधि है जागरण की। साउंड कौन सा लाना है? डिवाइन कॉल। जिसको ये आवाज आ गई प्रभु की, वो रुकता नहीं है फिर। परमात्मा की आवाज आ जाना, फिर वो रुकता ही नहीं है। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी सबसे पहला पावरफुल सेंट है क्रिश्चियनिटी का, जिसने क्रिश्चियनिटी में सन्यास जैसी कोई बात थी ही नहीं, वैराग जैसी, जिसने वैराग और ब्रह्मचर्य को स्थापित किया, वो सेंट फ्रांसिस। पहले नवयुवक था, किसी से प्रेम करता था, शादी करने वाला था, देश पर आक्रमण हुआ, मिलिट्री में भर्ती हुआ, जा रहा है युद्ध करने, अचानक जाते जाते पीछे से आवाज आती है, फ्रांसिस। वो देखता है कोई भी नहीं है, फिर से आवाज आती है, बाकी सैनिक आगे चले जाते, वो अपने घोड़े को पानी पिलाने इस तालाब के पास आता है, फिर से आवाज आती है, फ्रांसिस गो एंड रिबिल्ट माय हाउस अगेन, मेरा जो घर है जो जर्जर हो चुका है जाकर उसका पुनरुद्धार करो। कौन सा घर? किसका घर? क्या घर? कुछ पता नहीं, पर वो आवाज इतनी स्ट्रांग है, इतना फोर्स है उस आवाज में कि वो वहां से पीछे टर्न हो गया, आ गया। और जैसे घर पहुंचा, राजा को पता चला, माँ बाप को पता चला, ये कायर है हमारा बेटा, भागकर आ गया, देश के लिए भेजा था, पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है उसको, विद्रोही जैसा है, विद्रोह किया इसने देश के साथ, उस जेल में रहता है, और वहां ही आध्यात्मिक क्रांति होती है। जब छूटता है वो ढूंढने लगता है, वो कौन सी मुझे आवाज आई थी, एक आवाज थी जो मुझे कह रही थी कि मेरा घर फिर से बनाओ, कौन सा घर, कैसा घर, ढूंढता है, इधर उधर भटकता है, देखता है एक जर्जर चर्च है, और फिर उसको एकदम स्ट्रांग फीलिंग आती है, यही वो जगह है, पत्थर इकट्ठा करता है, अकेला मेहनत करता है, और वो चर्च को वापस बनाता है। वहां से एक नए सांप्रदाय की क्रिश्चियनिटी में एस्टैब्लिश होती है, फ्रांसिसियन, जिसमें 2 नियम होते हैं, एक सेलिबसी और पावर्टी, पैसे रखना ही नहीं है, और ब्रह्मचर्य, और फिर उसके शिष्य, और बहुत बड़ी आगे कहानी। तो क्या हुआ इसको? एक आवाज आई, डिवाइन कॉल। और जब ये कॉल आ जाती है तो व्यक्ति सो नहीं सकता है, पर इस कॉल के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है। कम ऑन, क्लैप्स माय हैंड एंड कम, आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो और आ जाओ। वो आवाज़ ऐसी है, इतनी पावरफुल है। वो आवाज़ किसको आई थी? ब्रह्मा बाबा को। क्या गीत है वो? राही चल पड़ा, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही। ये था, ये क्या था? दिस इज डिवाइन कॉल। सारा बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। नहीं तो कोई छोड़ता है? छोड़ेगा? इम्पॉसिबल। पर ये कॉल इतना पावरफुल था, इसको कहते हैं डिवाइन कॉल। हमें याद है, हम जब एकदम जैसे वैराग्य की अवस्था में थे और जैसे संसार छोड़ रहे ऐसे संकल्प में थे और एक आश्रम में थे, वहाँ एक युवक आया तो उसकी चर्चा चालू थी वहाँ के जो मठाध्यक्ष थे उनसे। मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है संसार छोड़ दूँ। तो जो गुरुजी थे उसको कहते थे, नहीं, जब तक तुमको डिवाइन कॉल नहीं आएगा ना, तुम छोड़ो मत, वेट करो। वो कह रहा था, मैं कब आएगा ये डिवाइन कॉल मुझे? मुझे अब भी छोड़ना है। उन्होंने उसको भेज दिया और फिर हमारी बारी आई मिलने की। तब हम छोटे थे, 21-22 वर्ष के। तो डिवाइन कॉल, डिवाइन कॉल अर्थात ऐसा कॉल कि ये तुम क्या कर रहे हो, किस नरक में पड़े हो, आओ इधर, निकल के वहां से। वैसे नहीं आ सकता है कोई। किस कीचड़ में पड़े हो, आ जाओ, मैं बुला रहा हूं तुमको, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। और ये कॉल इतना पावरफुल होगा, इतनी स्ट्रांग टचिंग होगी ये, फिर कोई इसे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, व्यक्ति निकल पड़ेगा। यही कॉल इस संसार में जितने महापुरुष है सबको ये कॉल आई है। उसके बाद ही उन्होंने, ये संसार व्यर्थ हो गया उनके लिए। तो जागरण के लिए क्या चाहिए? साउंड, डिवाइन कॉल। चौथा, फिर भी नहीं जाग रहे कॉल आ गई, सोच रहे ये मेरे लिए नहीं है, ये इसके लिए ये दूसरे करने चाहिए, तुम लोग करो, आगे जाओ तुम लोग, मैं सबको आगे बढ़ाने वाला हूँ, सब आगे जाओ, पहले आप। ब्रह्मा कुमारी में जाओ, वहाँ बहुत अच्छा, मुरलियों में आता है ना, दूसरों को कहते बहुत अच्छा, और तुम कब आओगे? दूसरे जाओ वहाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा है। मिस कॉल। अगला, जब व्यक्ति सोता नहीं है, कुंभकर्ण सोया हुआ है, तो रावण ने क्या किया, उसको हिलाना डुलाना चालू किया, उसको हिलाओ डुलाओ, इधर से हिलाओ उधर से हिलाओ, तो व्यक्ति जागता है। तो चौथा, हिलाना डुलाना अर्थात चिंतन, ज्ञान चिंतन निरंतर होता रहे तो अपने आप जागरण होगा। वो कब होगा पता नहीं, पर चिंतन छोड़ना नहीं है। रोज आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी मुरली की पॉइंट, कुछ भी ले लो, कोई किताब ले लो, एक लाइन पढ़ो और चिंतन करो एकांत में। जो लोग फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं वो क्या करते हैं? एक फिल्म डायरेक्टर की हम जीवन कहानी पढ़ रहे थे कभी, तो उसमें उन्होंने लिखा था, जब भी मुझे कोई नई फिल्म बनानी होती है और नई स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं भारत से बाहर निकल जाता हूँ, किसी दूसरे देश में, जहाँ पर टाइम जोन ही डिफरेंट है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, तो यहाँ के कोई कॉल उधर नहीं आते यहाँ के सब लोगों से अलग हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना माइंड एकदम फ्रेश चाहिए और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं एकदम एकांत में चला जाता हूँ। इवन AR रहमान का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहता है, हाउ डू यू कंपोज न्यू ट्यून्स, उसको पूछा गया, ये तुम नए नए म्यूजिक लाते कहाँ से हो? उसने कहा, जब भी मुझे नई ट्यून, नया म्यूजिक करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एकांत में चला जाता हूँ, बिल्कुल किसी से कॉन्टैक्ट नहीं रखता हूँ, सबसे कॉन्टैक्ट तोड़ देता हूँ, और उस एकांत की अवस्था में माइंड ऐसा एक्टिव हो जाता है, इतना क्रिएटिव हो जाता है कि उस एकांत और उस मौन से ही वो ट्यून निकलती है, नेचर से कैच करते, प्रकृति के समीप चले जाते हैं, का अकेले जंगल में घूमते हैं ये सारे लोग, और फिर वहाँ, और फिर संसार उनकी जब ट्यून सुनता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, ये जो तारीफ हो रही है बहुत बाहर की है, ये तो यहाँ परिधि पर कहीं है, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, बहुत छोटा है, बाकी उन्होंने जो ढूंढा है वो अपने अंतस में ढूंढा है। अकेले हो जाने का नाम है धर्म, अकेले हो जाने का नाम है अध्यात्म, कोई भी नहीं है वहां पर, कोई भी नहीं, मैं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, वहां पर नई रचनाएं होती है, नई कलाकृति, नई पेंटिंग्स, नया संगीत, नया म्यूजिक, नई कहानी, नई कविताएं, ये सब कहां से निकलता है? आर्ट की जो फील्ड है वो कहां जन्म लेती है? एकांत में। अच्छा, इसीलिए कुछ कुछ नया नया निकालते रहते हैं। और जितना गहरा एकांत होगा उतनी ज्यादा नवीनता होगी, नहीं तो केवल चोरी होगी, इसका चुराया उसका चुराया, यहां से लिया वहां से लिया, अपना कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति था, वो भाषण देता था बहुत अच्छा, पर वो भाषण देना बंद कर दिया, लोग उसको बुलाने लगे, आओ आओ दो दो दो, उसने कहा अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जबरदस्ती इतना किया इतना किया, उसके भगत तो वो आया और मंच पर गया, भाषण चालू करने से पहले उसने ऐसा किया, ऐसा, फिर इन्वर्टेड को, फिर भाषण चालू किया, भाषण पूरा हुआ, एकदम धुआंधार भाजा, तालियों की गड़गड़ाहट, भाषण पूरा होने के बाद उसने ऐसा किया, तो लोगों ने पूछा बाद में, ये सब तो ठीक है पर ये जो किया ये क्या था? उसने कहा ये सब चुराया हुआ माल था, इन्वर्टेड कॉमा, मेरा कुछ था ही नहीं इसमें, इन्वर्टेड कॉमा, ये था ना, अब मैं ये हूं जो तुम्हारे सामने हूं, ये सब किताबों का था। तो क्या चाहिए? चर्निंग, चर्निंग अर्थात चिंतन, मनन, सोचना अर्थात तैरना, चिंतन करना अर्थात डूबना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम क्या करते हो? तैरते हो, क्या मिलेगी तुमको? मछलियां। तुमको चाहिए क्या? हीरे मोती रतन, तो क्या करना पड़ेगा? मैं आशिक गहरे मोती का, मुझे गहरे जाना है, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं तो गोताखोर हूं अंदर जाऊंगा। पांचवा, चुबाते हैं, रावण को क्या किया था? फिर वो भाले से चुबा रहे, इससे चुबा रहे, वो उठ ही नहीं रहा है, क्या करे अब, निद्रा इतनी प्रगाढ़ इतनी गहरी है कि चुबा रहा, पियर्स कर रहे उसको। ये पियर्सिंग क्या है? जीवन के जो भी नकारात्मक अनुभव है वो हमें किस लिए आ रहे हैं जीवन में? जगाने के लिए। अब तो जागो, इसको दोस्त दोस्त करते फिर रहे थे, भाग गया ना धोखा देके, दो दोस्त मेरा मेरा करते गए थे, चला गया ना, मेरा ये मेरा वो, धोखेबाज दुनिया है, किसको अपना कहे? ये जब धक्के मिलेंगे ना तब जागना होता है, तब अपने आप जागरण होता है। जीवन के जितने नकारात्मक अनुभव है वो किस लिए आए हमारे जीवन में? सिखाने के लिए, जगाने के लिए। पर हम उसको ठीक है सीखते ही नहीं है, उससे भूल जाते हैं, बीती सो बीती। चिंतन करना है, अमृत वेले चिंतन करना है, जीवन में जो नकारात्मक अनुभव आए उन सब का चिंतन किया, फिर भी नींद बहुत गहरी है, अब क्या करें? अब भी जागरण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, धक्का, वो कहीं सोता है उसको पहले हिलाते, नहीं सो जा, उसके बाद में धक्का लगा उसको जोर से, एक थप्पड़ लगा दो, धक्का लगा दो, तब कहीं वो जागता है। यहां पर कौन सा धक्का? कौन सा धक्का? ये जो धक्का लगता है ना, यही हमें जगाता है। धक्का अर्थात शॉक। इसके लिए जब जब जीवन में शॉक लगा है ना, उसको भूलना नहीं है। एक तो वो जो हिलना डुलना, वो तो बहुत, वो चिंतन था, वो माइंड था, वो चुबाना भी माइंड था, ये धक्का है जो बहुत मेजर शॉक्स लगे हैं जीवन में, मेजर। तो वो जो है ना, वो शॉक ही हमें भ्रम से मुक्त करते हैं। जैसे वो नारद ने भेज दिया ना उसको रत्नाकर डाकू की, जाओ पूछ के आओ तुम्हारे पति पत्नी से, तुम्हारे पापों में वो सहभागी है, उसको लगता है सब मेरे साथ, क्योंकि मैं तो सब कुछ इनके लिए कर रहा हूँ। पत्नी से, पत्नी कहती है मैं थोड़ी ना, वो तुम्हारे पाप है, मैंने थोड़ी ना तुमको बोला है कि ये करके तुम पैसे लाओ। पिता कहते हैं मुझे क्या पता तुमको इसके लिए, थोड़ी ना सब मना कर देते, तब क्या होता है उसको? मैं सब कुछ इनके लिए चोरी कर रहा हूँ, डाका डालता हूँ, और ये लोग कहते हैं हमको कोई लेना देना है, तुम्हारे पाप है, ये क्या हो गया उसको फिर? धक्का लग गया, ये क्या मेरे अपने पराए, शौक, उसका भ्रम, शौक अर्थात भ्रम का टूटना। तुलसीदास, भ्रम, प्रेम प्रेम प्रेम, मेरी मेरी मेरी, टूट गया। भरतरी, मेरी पत्नी फल घूमते घूमते वापस आ गया। भ्रम पर हमारा ऐसा है, हमारे भ्रम तब टूटते हैं जब एकदम से एग्जाम पेपर आ जाता है, भ्रम पहले ही बना ही नहीं कि टूटना पड़े। ऐसा जीवन जियो कि जिसमें भ्रम ही उत्पन्न ना हो, वो ज्ञान का निरंतर चिंतन चाहिए, फिर वो अवस्था होगी, नहीं तो भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। किसी को कहा जाए एक हजार पेज की किताब है, किसको कितना टाइम लगेगा पढ़ने के लिए? कोई लेखक, कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको 6 मास, 1000 पेज की किताब है। कोई डॉक्टर है तो 1 महीना, कोई वकील है, चाहे डॉक्टर को शायद 1 महीना, वकील है उसको शायद 15 दिन, कोई गहरा चिंतक है बहुत ज़्यादा पढ़ने का जो शौकीन है उसको 1 हफ्ता ही लग जाए। और जब एक विद्यार्थी को पूछा जाता है कि कितना टाइम लगेगा बताओ 1000 पेज की किताब पढ़ने के लिए, वो कहता है डिपेंड्स ऑन व्हेन इज द एग्जामिनेशन। एग्जाम कब है इस पर ये निर्भर करता है, क्योंकि वो पढ़ेगा कब, जब पढ़ाई जब एग्जाम सामने बिल्कुल एकदम सामने आ जाए तो पढ़ाई चालू करता है, तब तक नहीं। तो वो अवस्था ना हो कि टाइम पर शौक लगे और फिर जागे, इससे पहले कि जाग नहीं, तैयारी पहले ही हो। उसके बाद भी नहीं जाग रहा है आदमी, नेक्स्ट स्टेप फायर, आग लगती है तो सो सकता है क्या? कोई कहे कि मुझे आज बहुत नींद आ रही है मैं आज सो रहा हूँ, कोई कहो थोड़ा सा ज्ञान कुछ करो डिस्कस कर दे, नहीं 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 आज नहीं आज नहीं, कोई आ जाओ थोड़ा पार्टी है, नहीं नहीं आज नहीं, मुझे बहुत मैं थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि 1 मिनट मुझे फुर्सत नहीं मिली, सुबह 2 बजे से जागा हुआ हूँ, पूरा दिन भर बिजी था, सेवा थे बहुत थी, अभी मुझे सोना है, थोड़ा मुरली डिस्कस, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा योग फॉरगेट, अभी सो गए और अचानक आग लग गई। अब कहता है कि नहीं अब तो पूरा जागरण, यहां तक कि दूसरों को बचाने में लगता है, अब आग बुझ भी गई तो कहो जाओ कि सो जाओ, अब काहे की नींद। फायर ऑफ वैराग, आग किसकी चाहिए? वैराग की, तो ही जागरण होता है, नहीं तो नहीं। ये 7 चीजें कर ली फिर भी आदमी कुंभकर्ण उठ ही नहीं रहा है, अब एक ही चीज बची है, कौन सी? नंदी ऊपर से खबर लेके आया था, घोटाला कर दिया सब कुछ ट्राई कर लिया पर आदमी उठता ही नहीं, कुंभकर्ण की नींद, लास्ट में कुंभकर्ण कैसे जागा? सुगंध से सब कुछ फेल हो गया। प्यूरिटी की खुशबू नंदी यही होगा कहीं ना कहीं, वो यही था वो नंदी जो शिव का संदेश में उसने घोटाला कर दिया। ढूंढना पड़ेगा कौन था। सारा कुछ फेल हो गया फिर भी चेतना जाग नहीं रही है, अब कैसे जागेगी? प्यूरिटी की सकाश से। अगर किसी को जगाना है तो क्या करना है उसको? अमृत वेला, प्यूरिटी की सकाश दो, सुगंध है प्यूरिटी, अगरबत्ती लगा दो उसके कमरे में, उठेगा रोज रोज किसी एक आत्मा को प्यूरिटी की सकाश। और जब हम प्यूरिटी में जीते हैं, प्यूरिटी की फ्रेग्रेंस में, प्यूरिटी की महक में जीते हैं, तो सोना असंभव है। निरंतर स्वमान में है, मैं कौन हूं? परम पवित्र आत्मा हूं। कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी हूं। कौन हूं? अनटच्ड। जगदीश भाई की कहानी फिर से बता रहे, एक कन्या है जो पानी भर रही है पनघट पर, एक युवक आता है कहता है प्यास लगी है पानी चाहिए, वो कहती पानी मैं दूंगी पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे। वो कहता है मैं दूर खड़ा रहूंगा, तुम ऊपर से पानी डालो। वो कहती है ठीक है, वो ऊपर से पानी डालती है, वो पानी लेता है, पानी पीता है, चला जाता है। संयोगवश कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है, बिना दोनों को बताए उनके माँ बाप उनके दोनों की शादी करते थे प्राचीन काल में। और पहली बार वो आमने सामने आते हैं और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वो कन्या कहती है अपना वादा भूलना नहीं, अंग से अंग न लगे, प्यूरिटी अर्थात अनटच्ड, टच ना करे कोई। और बाबा के महावाक्य है, संकल्प से यदि कोई टच करता है तो इसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? संकल्प, नजर से टच, नजर शब्द है बाबा की मुरली में, नजर से भी यदि कोई टच करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? किसने पढ़ी है मुरली? महा 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 पाप। ये भगवान के महावाक्य है, नजर से, हाथ से नहीं, नजर, नजर से, नजर से भी चमड़ी को टच कर करता है तो, क्योंकि ये टच से ही माया चालू हो जाती है सारी। हम किसी को टच ना करें, कोई हमें टच ना करे। अव्यक्त बाप दादा आते हैं मंच पर बैठते, कितना कम हिलते डुलते हैं, क्या ज्यादा, खाली दादियों को थोड़ा बहुत बस, बाकी मूवमेंट्स कितनी कम है। इसको टच करूं, उसको टच करूं, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं, शांति से बैठे रहते। टच से माया उत्पन्न होती है, स्पर्श। तो कहाँ थे हम? सुगंध, किसकी सुगंध? प्यूरिटी की। तो आठवां सूत्र है जागरण का, सुगंध। उस सुगंध से अपने आप को भरना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्यूरिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये लास्ट पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ो। वो केवल समान से रिपीट करने से नहीं होता है, मैं परम पवित्र आत्मा, वो रिपीट करते रहे, रिपीट करते रहे, उससे नहीं होगा। वो चिंतन से, पढ़ाई से, लोगों ने क्या क्या किया उसके लिए, क्योंकि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ब्रह्मचर्य कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बहुत समय से चालू है, लोगों ने बहुत प्रयत्न किए इसके लिए। और ये भी नहीं कहा जा सकता है वो सब मूर्ख थे, जितना उनकी समझ में था, जितना उनको समझ में आए, सब कुछ किया। और बहुत सारी बातें बाबा ने भी कही है। तो प्यूरिटी की सुगंध, तो ऐसे ये आठ सूत्र है जागे हुए कुंभकर्ण को, सो गए और जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद से जागने के लिए। नींद कौन सी है हमारी? कुंभकर्णी नींद है, माँ कुंभकर्णी नींद। सबसे पहला बताया प्रकाश को लाना है, कौन सा प्रकाश? ज्ञान का। दूसरा बताया पानी डाल देना, कौन सा पानी? प्रभु प्रेम का। तीसरा बताया आवाज, तो वो आवाज हमको आ जाए प्रभु की, वो टचिंग हो जाए, वो फीलिंग आ जाए कि बाबा ये मेरे लिए कह रहा है, और इतनी स्ट्रांग वो आवाज है कि अब दुनिया वाले कुछ भी कहे हम रुकेंगे नहीं। आई एम अनस्टॉपेबल टुडे, मैं रुकने वाला नहीं। वो आवाज इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, पर वो आने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। चौथा हिलाना डुलाना, किससे हिलाएंगे डुलाएंगे हमको? ये शरीर को अगर हिलाते डुलाते नहीं है ना, शरीर में आलस आ जाता है, इसलिए शरीर का हर अंग हिलता डुलता रहे, एक्सरसाइज। जहां जो अंग हिलता है वहां एनर्जी फ्लो होती है, ये हाथों की एक्सरसाइज करो, इसमें एनर्जी जाएगी। हर जॉइंट जो है हमारा, कहते हैं सात चक्र है, परंतु सूक्ष्म में देखा है तो हर जॉइंट एक चक्र है, और हर चक्र का एक्टिवेशन होना चाहिए। सातों चक्र जो होते हैं ना, कुंडलिनी, जागरण, ये एक एक जॉइंट एक एक चक्र है। जितना इसकी एक्सरसाइज करोगे, ये एक्सरसाइज केवल हेल्थ पर्पस के लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अगला बताया चुबाना, किससे? जीवन के जो भी कटु अनुभव आए हैं, नकारात्मक अनुभव आए, एकांत में बैठकर उनका चिंतन करो। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए थे। आवर बेस्ट टीचर, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, ऐसा कहा जाता है। अगला शॉक, जो शॉक वाले इवेंट्स हुए हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में सब कुछ निशॉक है, बिना शॉक के हमें हर एक को शॉक मिले, हर एक के जीवन में अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, भूकंप तो कहीं कहीं आते ही रहते दिन रात, कहीं कहीं नहीं आते, अब अकंप है कोई कोई चेतना है, पर मैक्सिमम लोगों के जीवन में एक ही दिन में पता नहीं कितने भूकंप आते, सुबह से लेकर शाम तक, अब भूकंप ही भूकंप कोई कहता है मैं इतने बजे आता हूँ और फिर आता ही नहीं, फिर मन में चलता है संकल्प उसके प्रति, देखो बोला आया नहीं। अगला फायर, आग लगानी है, वैराग। 9 दिन तक वैराग की चर्चा यहाँ चली थी, वैराग साधना। अगला लास्ट सुगंध, इससे तो बिल्कुल श्योर शॉट है उठेगा, परंतु प्यूरिटी कैसी हो, हम दूसरों को उतनी ही प्यूरिटी सिखा सकते जितनी हम में है। हमारी आवाज तभी बुलंद हो सकती है जब अंदर प्यूरिटी है, अगर अंदर ही गड़बड़ है तो हम दूसरों को सिखा भी नहीं सकते। इसलिए प्यूरिटी की सुगंध से स्वयं महकना है और इस सारे वसुंधरा पर प्यूरिटी की सुगंध फैलानी है। अच्छा, ओम शांति। तो जाग 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 रे मातृभू पुकारती, जागो। ओम शांति।
तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, शत्रु अपने शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता, समाधि को शंभु के निवास को देख आंख खोल तू और गला टटोलता, अस्थि देखी रक्त तू, वस्त्र देखी शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती, मातृभू पुकारती, करुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, तान पर कांप व्योम भूडुले, मान सर पे जो उठी, बाहु शिखर ध्वस्त हो, बाहु बाहु वीर की स्वाभिमान से खिले, जाग शंख फूंक रे, शूर यौन चूक रे, मातृभूमि आज फिर है तुझे निहारती, मातृभू पुकारती, करुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, आज हाथ रिक्त क्यों, जल जल विक्षिप्त क्यों, शत्रु हाथ में लिए करके तिरछी आज क्यों, देश लाज के लिए, जड़ के साज के लिए, समय आज आ गया, तू खड़ा है मौन क्यों, करो सिंह गर्जना, शत्रु से है निबटना, जय निनाद बोल रे, है अजय भारती, मातृभू पुकारती, करुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के, देश के, जाग जाग जागरे मातृभू पुकार।